गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा के स्वरूप श्री 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 स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को प्रणाम। पूज्य श्री चरण स्वामी अखंडानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित ईश्वर को भी प्रणाम। नमो नारायण। आज का और कल के आने वाले कल के जो विचार हैं वो इस छठे अध्याय का हृदय है। काफी कुछ कहा गया है किंतु उस आत्म संयम की प्राप्ति के लिए क्या करना है ये 5, 6, 7 श्लोक हैं 11 से 17 तक। इनमें एक साधना का एक स्पष्ट मार्ग इंगित किया है। अंतर गुहा में प्रवेश के लिए हृदय की अंतराकाश में प्रवेश करके लिए या परमात्मा के द्वार पर उपस्थित होने के लिए मार्ग क्या है ये छठे अध्याय के 11वें 12वें मंत्र को पढ़ेंगे। सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः स्थिरम आसनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जत् द्योगमात्मविशुद्धये हरिः ओम्। सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुद्ध स्थान में बैठना, स्थिर बैठना। आसन जो है वो स्थिर हो, आपका शरीर भी स्थिर रहे। बहुत ऊंचा आसन ना हो ऊंची जगह में, बहुत नीचे भी ना हो। और चैला जिन कुशोत्तरम, कृष्ण मृग के छाला और कुश का आसन वस्त्र को धारण करके। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, वहां बैठने के बाद में मन को एकाग्र करके। यदचित्तेन्द्रिय क्रियः, चित्त इंद्रिय है उनको भी स्थिर कर लें। उपविश्यासने युञ्जत्, अपने आप में अपने आप को जोड़ करके बैठना। और आत्मा के विशुद्ध तत्व की प्राप्ति करना। देखिए अब तक जो कुछ कहा है इनका सार तो है, मन को एकाग्र करना है, चित्त का शुद्धिकरण चाहिए, इंद्रियों की स्थैर्यता चाहिए, चंचलता नहीं चाहिए। तीन के बाद चौथा कारण बताया कि शुद्ध स्थान हो, आसन जो है वो कुश बिछे, उसके ऊपर में मृगछाला, एक शुद्ध वस्त्र। उसके बाद में कहा कि स्थिरा बैठे, स्थिर बैठे, आसन बहुत ऊपर ना हो बहुत नीचे ना हो, इधर उधर नहीं देखते हुए मन को एकाग्र करना। एक बात समझने वाली है जो आप अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, जैसे कि अभी महाराज जी बोल रहे थे कि जो साधन करना है तो अपने अंतसत्व का शुद्धिकरण करना है, ये बाल जो कपाल में चंदन लगा लेते हैं, बड़े तिलक कर लेते हैं, भस्म लगा लेते हैं, ये बाह्य साधना है, किंतु महाराज जी के लिए वो आवश्यक नहीं है। कबीर ने क्या कहा, क्या मृगशाला, कबीर कहते हैं क्या मृगशाला, क्या आसन, सब बेकार है, सब फेंक दो, किसी की आवश्यकता नहीं। कबीर ने जो कहा वो क्या कृष्ण से कोई विरुद्ध है क्या, एक बात स्पष्ट है। अरे जिद्दू कृष्ण मूर्ति का नाम तो आप सुने ही होंगे, वो बड़े तत्वचिंतक रहे, वो कहते हैं कोई साधना की आवश्यकता नहीं, बस आप अपने भीतर जाओ ज्ञान हो जाएगा, जिद्दू ऐसा कहते हैं। इस बात को समझने समझाने के लिए एक उदाहरण देंगे। एक बहुत बड़ा तत्वचिंतक हुआ है, बड़ा साधक हुआ है, तो वो एक दिन जंगल में गया, पतझड़ की मौसम थी, पेड़ के नीचे चांदनी रात में ध्यान में बैठा, देखा ऊपर से कुछ पत्ते गिर रहे हैं, हवा चलती है, सूखे पत्ते गिरते हैं, उस सूखे पत्तों को गिरते हुए देखता रहा। सवेरे होते होते तो आधा वो पत्तों से ढक गया था, उस सवेरे उठ के नाश्ते नाश्ता गांव में आ गया, मुझे ज्ञान हो गया। लोग पूछे कैसे हो गया, अरे जाओ जंगल में एक सूखे पेड़ के नीचे बैठो, चांदनी रात होनी चाहिए, हवा चलती होनी चाहिए, पत्ते जो गिरते रहेंगे उनको देखते रहना, सवेरे ज्ञान हो जाएगा। लोग बाग कहते इतना बड़ा आदमी है, और हमने देखा कल शाम तक तो उदास था, खिन्न था, जंगल जाते हुए भी देखा था, अभी सवेरे देखा वो नाश्ता आ रहा है, चेहरे में प्रकाश रोशनी हो रही है, ज्ञान की उपलब्धि हो गई, खुशी हो गया। अभी आप सोच लो, आपने 99 डिग्री तक पानी को गर्म कर लिया, 99 डिग्री, 100 में तो भाप हो जाएगी, 99 तक कर लिया, फिर पतीली उठा करके धूप में रखो, कड़ी धूप है, बस धूप में रखने के साथ में एक मिनट हुई नहीं हुई क्या, उसमें से भाप बनना चालू हो जाएगी। तो आप बोल दो ये भाप कैसे बनती, कुछ नहीं जी, अंदर का पानी बाहर रखो हो जाएगी। अंदर का पानी बाहर रखने से कैसे हो जाएगी, वो पहले 99 डिग्री गर्म तो किया था कि नहीं है, और आप ठहरे पूरे बर्फ, एकदम बर्फ फ्रिज में से निकाल के रखा है, शिकड़ा हुआ, क्या उसको आप धूप में रखो भाप बनेगी, पहले तो पानी बनेगा, फिर पानी गर्म होते 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 फिर भाप बन सकती है, नहीं भी बन सकती अगर शाम ढल गई तो। जो कृष्ण कहते, कृष्ण एक श्रेष्ठ शिक्षक है, कृष्ण के समान कोई दूसरे गुरु मिलना मुश्किल है। कृष्ण क्या कहते हैं, देखिए एक टीचर के लिए क्या योग्य होता है, टीचर के लिए योग्य होता है कि वह विद्यार्थी के स्तर पर आकर के बात करें। हम लोग जो पढ़ाते हैं टीचर ट्रेनिंग, तो कहते हैं टीचर हैज गॉट नो राइट टू वॉमिट आउट व्हाट इज एग्जिस्टिंग इन हिज स्टमक, मेरे पेट में क्या सुख है दुख है वो क्लास में जाकर के उगल देने का कोई मतलब नहीं है। जिन विद्यार्थियों को पढ़ाना है, सोचना उनका स्तर क्या है, वो किस स्तर से समझेंगे। आप बहुत बड़े हैं, बहुत ज्ञानी हैं, द्वादश दर्शनाचार्य हैं, वो सामने जो बैठे हैं उनकी क्या औकात है, आपने क्या बोला उनके सिर में जाएगा, वो ऐसे बैठे रहेंगे आपके सामने, आप देख भी रहे हो, कुछ बोल भी नहीं सकते, क्या करोगे। ये बहुत कड़क बोलने वाला एक ही महात्मा रहे, हमारे ब्रह्मलीन कैलाश पीठाधीशर श्री स्वामी विद्यानंद जी महाराज, बड़े कड़क बोलते थे, बोलते थे शास्त्र में लिखा है अगर सत्संग में सो गए तो सांप बनोगे, और हमको बना पड़ेगा मदारी, क्योंकि हमारी सत्संग में सोए हो, हमारा तो नया जन्म है नहीं, तो सारा जीवन फिर सांप ही रहोगे, क्योंकि सांप से तुम्हारी मुक्ति कोई नहीं करेगा। अगर आप सोते हो सत्संग में, हम आपको ना जगाएं तो हमको मदारी बनना पड़ेगा और आपको सांप बनना पड़ेगा। आप सांप बनो चाहो ना बनो, मैं क्यों मदारी बनूंगा, इसलिए अभी जगा देता हूं, मेरा नया जन्म नहीं है, ऐसे कड़क बोलते थे। तो ये बहुत जरूरी बात है, शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अपने शिष्य के स्तर पर आए और उनको उनकी कैसे समझ है उस भाषा में समझाए। दो, शिक्षक को खुद को जो पढ़ाना है वो पचा हुआ चाहिए, रटा हुआ नहीं चाहिए। एक पचा हुआ होता है, एक रटा हुआ होता है। रटा हुआ होता है वो टीचर खुद कंफ्यूज है, उसको स्पष्ट नहीं है, वो रटा हुआ है तो कि मैं पे बोल देगा, नहीं खुद समझे, समझने के बाद में कैसे समझाना, व्युत्पत्ति करके, दृष्टांत दे करके, उदाहरण करके समझाना चाहिए। जो विषय पढ़ाना है उस विषय की एक स्पष्टता चाहिए, उसके इर्द गिर्द के विषय हैं उनकी भी स्पष्टता चाहिए। और शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है कि कभी वो दंभ ना करे। विद्यार्थियों को ये नहीं समझना चाहिए कि ये लोग मूर्ख है, मैं ही पढ़ा लिखा हूं, ना। विद्यार्थी भी बड़े ज्ञानी होते हैं। हमारे आश्रम में जो शिव मंदिर है उसमें रोज जो लोग आते हैं उनको नमकम चमकम रुद्रम पुरुषुक्त श्रीसुक्त सब कंठस्थ होता है। तो इतने सारे लोग हैं, तो अगर हमने अभी तो सद्भाग्य से गुरु कृपा से हमारे पुजारी है एक 15 साल से, एक 12 साल से, तो उनको ये पता है इन लोगों की बात नहीं। तो अगर नया पुजारी रखना है तो मुश्किल हो जाएगा, ओ क्षय को खोए बोलेगा, हाँ ओ स्मरण को अस्मरण बोलता है, तो कैसे चलेगा वो। आप बिहार के हैं कि आप यूपी के हैं कि आप नेपाल के हैं, तो आपके उच्चारण अलग हो जाएंगे, किंतु नेपाल में रहे तो चलेगा, यहां आए तो आपके उच्चारण को आपको जागृति पूर्वक ठीक करना ही पड़ता है, नहीं तो दूसरा अर्थ हो जाता है। तो जो शिक्षक है पढ़ाने वाला, उसके लिए कर्तव्य बनता है कि वह पूरी तैयारी करके आए। नंबर दो, अगर विद्यार्थी कुछ पूछते हैं, अगर उसे इस विषय का स्पष्ट अवगत होने की भान नहीं है, समानता नहीं है, तो कहना चाहिए मुझे क्षमा करो, मैं रेफर करके कल आपको बता दूंगा। और गप्प नहीं लड़ाना चाहिए। जब गप्प लड़ा दिया, विद्यार्थी लोग हैं वो आप में श्रद्धा छूट जाएगी, आपके पीछे और शिक्षकों में भी श्रद्धा छूट जाएगी कि लोग यहां बैठ के गप लड़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपकी पढ़ाने में रुचि चाहिए, और पढ़ाने में मैं मेरे विद्यार्थियों को उठा करके जो बेस्ट है वो दे करके जाऊं, ऐसा भाव होना चाहिए। कृष्ण है ये तमाम गुणों के धनी है। एजुकेशन साइकोलॉजी जो पढ़ाई जाती है उसमें कोई एक ऐसा गुण नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण में ना हो, गुण तुलना करने वाले भगवान के। किंतु वो जानते हैं, कबीर तो बहुत साल के बाद में आए, कृष्ण तो पहले हुए हैं। कबीर का कहना भी गलत नहीं है, कबीर अपनी स्थिति से कहते हैं, अभी आसन छोड़ो, अभी कोई ध्यान धर्म छोड़ो। कबीर ने कितने दिन तक कपड़ा बुनते 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 ताना बाना करते ईड़ा पिंगला को साध लिया। अब ईड़ा पिंगला को साधने के बाद भी वो कहते हैं कि कोई आसन की जरूरत, तो उनको नहीं है आसन की आवश्यकता। और जहां तक जिद्दू कृष्णमूर्ति का प्रश्न है, उसका स्तर तो बहुत ही अलग है, उसने कोई साधना किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो छोटे बच्चे थे तो इनके ऊपर बहुत प्रयोग किए गए, इतने हद तक प्रयोग किए कि जिद्दू को अपनी मातृभाषा भी नहीं आती थी। 9 साल 10 साल तक बच्चा अगर अपने माता पिता के साथ में रहे तो कभी अपनी मातृभाषा नहीं भूलेगा। हमारे ये शरीर के संन्यास के पहले हम अपने पिताजी के पास ही तो रहे छोटेपन में, तो पिताजी जहां जहां उनके सर्विस होती थी वहां जाते थे, पूरे भारत भर में भ्रमण होता था, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में रहे, तो उन दिनों में कक्षा दो, कक्षा तीन, कक्षा चार, कक्षा पांच, कक्षा आठ तक हम मराठी बोलते थे, तमिल बोलते थे, पंजाबी बोलते थे, सिंधी बोलते थे, हिंदी बोलते थे, गुजराती। क्यों? वो बच्चे हैं ना, बच्चों का निर्मल चित्त जहां जहां जाएंगे उनकी भाषा पकड़ लेंगे। बचपन की जो सीखी हुई भाषा है वो बड़े होते होते तक नहीं जाती है, वो बराबर रहती है। श्री कन्हैयालाल मुंशी जी ने कहा, बचपन में कितना रट सकते हो रट लो, बड़ी उम्र में रट नहीं सकते। एक श्लोक रटते 10 दिन हो जाएंगे। बचपन में रोज आप 5 श्लोक रट सकते हो, फिर समझ बचपन में नहीं होती है, बड़े होने पर समझ हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी बात है, आवश्यक है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति है उनके द्वारा एक व्यक्ति का कल्याण नहीं हुआ, दुर्भाग्य से। वो स्वयं एक बहुत उच्च कोटि के रहे, साधक नहीं, सिद्ध। उन्होंने साधना की नहीं है, साधना उनसे करवाई गई है। एनी बेसेंट रही और लीड विडर रहे, इन्होंने थियोसोफिस्ट लोग रहे, जिनसे सब साधनाएं करवाई। कैसे? उसको बेहोश करके, अवचेतन अवस्था में। एक पुस्तक है जिसका लेखक का नाम लिखा है जय कृष्णमूर्ति लिखा हुआ है, एट द फीट ऑफ द मास्टर। किंतु कृष्णमूर्ति कहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर वेदर आई हैव रिटन दिस बुक और नॉट, मुझे पता नहीं है मैंने कब किताब लिखी, क्योंकि उन्होंने नहीं लिखी है, उनसे लिखवाई गई है, उनको माध्यम बनाया गया। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, लिखो तो उसमें आपकी जागृति है, आप चेतना में हो, अवेयरनेस है, और माध्यम बनाया गया, आपको बेहोश करके आपसे काम कराया गया। तो ये एक पूरा साइंस एक है। उस विज्ञान के माध्यम से जय कृष्णमूर्ति ने कोई साधना नहीं किए 9 साल की उम्र से। जैसे कि आप अभी बंबई में रहते हैं, आपने न्यूयॉर्क जाने के लिए टिकट खरीद कर लिया, आपके पास में पासपोर्ट भी है, वीसा भी है, आपसे कहें आप प्रेमपुरी में चलिए, तीनमाला में आइए, स्वामी अध्यात्मानंद जी प्रवचन करते हैं, उनके साथ में बैठिए, आंख बंद कीजिए, जब आप आंख खोलेंगे तो न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? वो जब यहां आके बैठ जाए उसको बेहोश कर लो, उतनी बेहोशी करा दो आंख खोले तो न्यूयॉर्क में रहे, तो फिर वो क्या कहेगा? जगेगा तो उसको पता ही नहीं है, क्या कहेगा? अरे आपको न्यूयॉर्क जाना है, कोई झमेला नहीं है भाई, आप जाओ प्रेमपुरी में, तीनमाला में, अध्यात्मानंद स्वामी है, उसके साथ बैठना, आंख बंद, हाथ में टिकट रख लेना, हाथ में पासपोर्ट रख लेना, वीसा रख लेना, आंख बंद करना, सामान साथ में रख लेना, फिर बस आंख बंद करके बैठो, फिर आंख खोले तो न्यूयॉर्क में। अरे ऐसे होता है क्या? ऐसे थोड़ा होता है, किंतु उसको पता ही नहीं है कि उसने कब ट्रैवल किया। जय कृष्णमूर्ति को पता ही नहीं है कि उन्होंने कब साधना की, उनसे करवाई गई, इनसे भी यात्रा कराई गई बेहोश करके। अर्जुन बेहोश नहीं है, अर्जुन तो होश में है। तो जो बंदा होश में है तो उसको बताना पड़ेगा कहां से है। आप लोग तो यहां आते हैं, परसों शाम को जो रसिया हुआ तो हमें पता हुआ कि हमारे आश्रम में एक सज्जन आए थे और वो बंबई में सवेरे पहुंच गए हैं। उनका नंबर हमें दिया गया तो हमने फोन के बाला, कहां टिके हो? वो बिच के इंडिया हॉस्पिटल के ठीक सामने, जहां पहले अमेरिकन एम्बेसी। अरे तो पास में हो, आओ ना, समझे कैसे आना है? जन्म तो उसका अफ्रीका में हुआ है, बंबई का उसका परिचय नहीं है। हमने कहा अगर कोई साथ में रहे, बोले मामा का लड़का है मगर वो भी हेग में रहता है, पैदा ही उधर हुआ है, वो भी पहली बार आया है, अभी हेग में रहने वाला जो है उसको क्या पता, कुछ चिंता नहीं, नीचे आ जाओ, एक टैक्सी पकड़ो, बोलना चाहिए यूजर्स कॉर्नर जाना है, ये पुराना नाम है, प्रेमपुरी चौक ये नया नाम है, उस चौक में नीचे पोस्ट ऑफिस है, ऊपर 5 माला का मकान है, प्रेमपुरी ओम लिखा हुआ है, और वहां जहां से टर्न करेंगे आप वो बाबुलनाथ की गली में, उधर बाएं हाथ में पहला ही एक तो गेट है, गेट में उतर जाओ और फिर देख लो लिखा हुआ है प्रेमपुरी। गुजराती नहीं पढ़ पाते हो, हिंदी नहीं पढ़ पाते हो तो सिक्योरिटी को पूछ लेना यही प्रेमपुरी है, पूछ लो, फिर वहां नीचे चप्पल निकालो, फिर सिक्योरिटी को बोलना हमको 3 माला जाना है। तो इतना कुछ उनको बोलना पड़ता है, नहीं बोले तो गुजरा नहीं होगा, वो नया आदमी है। अर्जुन को भी बोलना पड़ता है, बिल्कुल नया है, सुखा है, उसको ध्यान पता नहीं है, उसको तीर चलाना पता है, तीर का प्रैक्टिस किया है, अंधेरे में तीर चला रहा है, रात में सब लोग सोए रहे, सन शन आवाज आ रही है, गुरु द्रोणाचार्य रात में उठे, आधी रात है ये कैसे करके अभी तीर चला रहे, कौन है? वो छोटा बच्चा था अर्जुन, रात रात में चला रहा था, तो क्या कर रहा है? बोले कि मैंने देखा कि भीम भाई है, वो अंधेरे में भी बैठ के लड्डू खा रहे हैं, तो उसका कोई लड्डू नाक में नहीं जा रहा था, सीधा मुंह में जा रहा था, अगर वो अंधेरे में लड्डू मुंह में जा सकता है तो मेरा अंधेरे में तीर क्यों नहीं जा सकता है? मैं अंधेरे में रियाज, तो अर्जुन का रियाज है। तो इतनी भूमिका के बाद आप समझना चाहिए कि हम जो साधना करने, कृष्ण कहते हैं सुचौ देह से प्रतिष्ठा पे, सबसे बड़ी बात चली है कि शुद्ध स्थान में बैठे। देखिए ध्यान दें, ये मकान जब खरीदा गया था तो यहां ग्राउंड फ्लोर और पहला माल ही था, दो तीन चार पांच नहीं थे, बाद में बने। तो किस चीज से बने भाई? सीमेंट से बने, चूना से बने, सरिया से बने, कलर है, लकड़ी है, पर्दे हैं, कारपेट है, ये फॉल्स सीलिंग्स है, ये सबसे बने। तो ये यहां के जो ड्रिंकिंग बार होते हैं जिसमें नाच गाच होता है, अताश बास खेलते हैं, क्लब है, तो उस वो किससे बनते हैं? वो भी चूना से बनते हैं, वो भी सीमेंट से बनते हैं, वो भी सरिया से बनते हैं, वो भी लकड़ी से बनते हैं, उनके पर्दे और भी ज्यादा अच्छे, हाँ संगीत भी वहां बढ़िया होता है। तो क्या कहा? सुचौ देह से प्रतिष्ठाप्य। देखिए ध्यान दें, मंदिर में आप जाओ जो भावना लेकर के, वो भावना आपको वो ड्रिंकिंग बार में नहीं आएगी। सत्संग भवन में थिएटर के माफिक है, यहां बैठो कुर्सी में जो भाव होता है, भारतीय विद्या भवन के थिएटर में जहां ड्रामा होते रहते हैं वहां पर अगर सत्संग रखा जाए, सत्संग तो होगा किंतु वहां ड्रामा अधिक होते हैं, सत्संग कम, तो ड्रामा का वाइब्रेशन है। ये समझाने के लिए आपके महाराष्ट्र में कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, आपके यहां एक सकुबाई थी, वो बाई है, वो अपना गोबर टीपती थी, वो जो गोबर टीपती थी दीवार में लगा देती थी। पंडरपुर यात्रा में गई, पड़ोसन ने सब गोबर कंडे ले लिए, फरियाद की है, तो जो कोतवाल था, क्या ये प्रूफ है कि ये कंडे तेरे? बोले एक कंडा कान में लगाओ, विठल विठल बोलेगा तो मेरे हैं, नहीं बोलेगा तो इसके, सारे कंडे बोल रहे विठल विठल। तो कैसे हुआ ये? क्योंकि वो जब भी गोबर काटती है, गोबर को कूटती है, उपले बनाती है, तो विठल विठल बोलती है। तो सुचौ देह से प्रतिष्ठा पे बोलने से शुद्ध स्थान में बैठना। हमारे गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, कीप अंडर लॉक एंड की योर पूजा रूम। अपना जो पूजा रूम है, जो ध्यान का कमरा है, उसको ताला चाबी में रखना, दुनिया भर को छोड़ना नहीं उसमें, वो लोगों के लिए एक विजिटिंग प्लेस नहीं होना चाहिए। आप कन्याकुमारी कभी जाएं, वहां पर एक ध्यान कक्ष है, उस ध्यान कक्ष में आपको न फोटो खींचना है, न बोलना है, कुछ नहीं, चुप रहना है, ओम लिखा है, बहुत पावर है उसमें। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के समाधि मंदिर है, तो समाधि मंदिर में जाए तो स्पर्श करे तो फील अंदर से पावर आ रही है। हमारे आश्रम में 4.25 एकड़ जमीन है, लोग बाग कहते हैं आपके आश्रम में प्रवेश करने के साथ में, और वहां खड़े हो जाते हैं, क्यों? वो एक वातावरण अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि एक लाइन में 5 आश्रम है, एक में तो लोग हैं वो इतवार को ही मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते। मंदिर है उसमें कोई पूजा अर्चना नहीं होती है, कोई जल नहीं चढ़ाते, उनका अपना ढंग है। एक में है वेदांत की बात करते हैं, उत्सव होते हैं, लिमिटेड लोग हैं। एक के अंदर में खाली स्कूल ही स्कूल चलता है, और जब इनके ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग होती है तो मारपीट भी कर लेते हैं लोग, शराब वराब भी पी लेते हैं, और जो जीत गया रात में फिर निरामिष भी खा करके तमाशा करते हैं। वो तो एक संस्था है, एजुकेशन की प्रोफेशनल संस्था। एक में सेवा ही सेवा होती है, भगवान नाम कीर्तन सब नहीं होता है। हमारा एक ही आश्रम है 5 लाइन में, कि जहां पर दिन में कितनी बार नमकम चमकम रुद्रम पुरुषुक्त श्रीसुक्त ललिता सहस नाम विष्णु सहस नाम, और रोज रामचरित मानस का एक पारायण पूरा होता है, रोज हमारा सुंदरकांड का पारायण होता है, रोज पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ होता है। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आश्रम जो है वो पत्थरों से नहीं बनता है, आश्रम जो है वो कितने सन्यासी द्वारा नहीं होता है, आश्रम कितना वहां जप होता है, कितना ध्यान होता है, कितना सत्संग होता है, कितनी सेवा होती है, कितना परोपकार होता है। तो सुचोदय से कहा तो क्या कहा कि आप ऐसे स्थान में रहो जो पवित्र स्थान हो, जो शुद्ध स्थान हो, जो अपवित्र न हो, जो अशुद्ध न हो। ये जब ये चंदन लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गोपी वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाभ्यंतर सूचि। अरे अगर मेरे शरीर में कोई अपवित्रता रह गई हो, अगर मेरे मन में कोई अपवित्रता हो, तो ये पवित्र हो जाए जब प्रभु के नाम को लेकर के अपने श्री हरि के इस गोपी चंदन को मस्तक में धारण करते हैं। रात में हम सीरियल देखते हैं जय 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 बजरंग बली, तो हनुमान जी महाराज जी हम किसके घर में अतिथि है, छोटा बच्चा है, तो उनकी दो बेटियां हैं, कहती हैं महाराज जी कैसे आना हुआ, बोले मेरे को कहां रहना है। अरे तू बंदर को हम क्या अपने घर में क्यों रखेंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। क्या सेवा करेगा बोलो चाची बोलो। तो चाची क्या बोली, मेरी दो बेटियां हैं वो मेले में जाएं, कल मेला लगेगा, वो इतनी सुंदर हो जाएं कि कोई राजकुमार उसको शादी कर ले। वो तो हो सकती है, कैसे, मेरे पास जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी को क्या करना, मैं बना दूंगा लेप आपको, क्या करना है, आप चेहरे पर लगा लो, चंद्रमा फीका हो जाएगा, इतने सुंदर हो जाओगे। मगर एक बात है, क्या बात है, अगर जड़ी बूटी का लेप चेहरे पर लगाने के बाद मन में किसी के लिए भी जानते अनजानते कलुषित बात आई, किसके लिए दुर्व्यवहार हुआ, किसके लिए आपने अनुचित शब्द उच्चारण किए, किसी का अपमान किया, किसके साथ दुर्व्यवहार किया, तो उसका विपरीत हो जाएगा, सुंदर चेहरा नहीं होगा, वो कद्रूप हो जाएगा, वो काला हो जाएगा, लड़कियां काली हो गई। क्यों, मां और बेटियां हैं, वो एक दूसरी बेटी के बारे में हमेशा कुलच्छनी कुलघातिनी ऐसे ही बोला करते थे। तो एक बहुत स्पष्ट बात है कि एक सुचोदय से कहा तो जिस स्थान में सच्चिंतन हो, जिस स्थान में एक पवित्र भाव हो, जैसे कि कोई चार पांच दिन के पहले राधा माधव परिवार में कीर्तन किया, प्रातः 9 बजे से शाम 5-5:30 बजे तक अखंड कीर्तन करते रहे, इतने भाव से, एक कोई गाने वाले सज्जन रहे, इनकी आंख में आंसू आ रहे हैं गा रहे, हमने कहा देखो भाई जब उठोगे थोड़ा दरी से थोड़ा ऐसा हाथ करके अपने सिर में लगा के जाना, यहां इतना हरि नाम हुआ है, ये जो चरण की धूल है ना भक्तों की, उनको मस्तक पर लगा के जाना, जो जूते बाहर पड़े उनको पांव नहीं मारना, समझना यही भगवान के चरण है, हाथ से स्पर्श करना, पांव से नहीं करना। तो जहां हरि नाम होता है सुचोदय से प्रतिष्ठापे, क्यों हम कहते हैं कि तीर्थ जाओ, क्यों कहते हैं कि तीर्थ में जाकर के रहो, क्या बात क्या है, तीर्थ में भी पंडागिरी है, तीर्थ में भी बिजनेस बहुत बढ़ गया है, किंतु वो तीर्थ जो है उसकी अपनी एक महत्ता है। जैसे कि ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ऊपर चले गए तो उत्तरकाशी है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्री है, केदार है, यहां हमारे यहां बंबई में या कलकत्ता में, दिल्ली में, अहमदाबाद में जितना शोर शराबा है, जितना ये अवांछनीय अनाध्यात्मिक जो है वो उतना उधर नहीं है, इसलिए वहां का जो वातावरण है वो विशुद्ध है कंपैरिजन टू, वो भी अभी कलुषित होता जा रहा है कंपैरिजन टू। तो क्यों कहा आपको कि इन तीर्थ स्थानों में जाओ और ध्यान करो, ये श्री शिवानंद महिमा कहती थी कि सर्प और नेवला के युद्ध होता है, सर्प और नेवला के जब युद्ध होता है तो नेवला जीतता है, सर्प तो हार जाता है, विष सर्प में अधिक है, शक्ति सर्प में अधिक है, नेवला में विष नहीं है, शक्ति शक्ति है, तो फिर नेवला क्यों जीतता है, नेवला जब हारने लगता है तो निकटस्थ समीपस्थ कोई जड़ी बूटियों को सूंघ लेता है, उसको नोर बेल कहते हैं, तो सूंघ लेता है, फिर ताकत आती है, फिर लड़ता है। सांप की तो एक ही ताकत थी, 100 थी, 80 हुई, 70 हुई, 50 हुई, 40 हुई, 30 हुई, अब इसकी क्या है, 50 होते होते फिर से सूंघ लेता, फिर सो गई, फिर 50 हो गया, फिर सूंघ लिया तो फिर सो गई, तो नेवले में तो ताकत जो है वो बनी बनाई रहती है, कम होने से फिर सूंघ लेता है, फिर शक्ति आती है तो वो सांप को हरा देता है। शिशिमा आनंद महिमा कहती थी कि ये जो सांप है वो संसार का सर्प है, नेवला हम तुम हो, और ये जड़ी बूटियां क्या है, ये बड़े बड़े महात्मा जी, प्रेमपुरी जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर अद्वैतानंद जी महाराज, अभी कपिल मुनि महाराज आएंगे, ये जो महात्मा बड़े बड़े हैं वो महात्मा लोग हैं, वो जड़ी बूटियां हैं। तो सवेरे सवेरे उठ के जो आप सत्संग में आते हो, इन जड़ी बूटियों को सूंघने आते हो, इन जड़ी बूटियों को सूंघ लेते हो, हाँ, बिनु सत्संग विवेक न हुई, तो आप ये सत्संग सुन करके दिन भर का 24 घंटे का जीने का एक सहारा हाँ कर लेते हो। कैसे कि कोई चाय पी ले दो कप, रात में उसको नींद नहीं आती है। सवेरे सवेरे आपने ये राम नाम का, वेदांत का, गीता का एक अमृत है, छक लिया है, हाँ छक लिया, छक लिया बोलते हैं, मतलब होश हो गए हैं। क्या कहे कि वो जो रात में पी ली है उसका नशा तो सवेरे तक उतर जाता है, किंतु ये जो आप सवेरे सवेरे राम नाम का नशा कर लेते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये नाम की जो खुमारी है, ज्ञान की जो खुमारी है, दिन रात रहेगी नशे में। क्या कूड़ा घड़ा है उसमें आप केरोसिन डाल लो, क्या हो जाएगा, केरोसिन की सुगंध नहीं जाएगी, कितना गर्म पानी डालो कितना साबुन नहीं, कूड़े घड़े में घी डाल लो उसकी खुशबू जो है, सवेरे सवेरे उठ करके ये एक घंटा डेढ़ घंटा पौने दो घंटा जो आप सत्संग सुन लेते हैं, वो आपके सुसुप्त मन में भी, अवचेतन अवस्था में भी ये ज्ञान सतत रहेगा, दिन भर रहेगा। और रात में सोने के पहले आज दिन भर आपने क्या सुना है उसको फिर सोचते सोचते सो जाओ, तो वो अवचेतन अवस्था में भी, जागृत में जो प्राप्त किया है सुसुप्ति में भी वही ज्ञान रहेगा। तो कृष्ण परमात्मा ने सबसे पहली बात कही, सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, शुद्ध स्थान में बैठो। शुद्ध स्थान माने ऐसा स्थान अपने कमरे में नहीं करो, कौन सा, बिस्तर में जहां सोते हो उसमें नहीं, ना बिल्कुल नहीं, जहां खाते हो वहां पर भी नहीं, बिल्कुल नहीं, जहां लोगों को मिलते हो वहां पर भी नहीं, नहीं, ऐसा एक कोना जहां आपको छोड़कर के, आपके भगवान को छोड़कर के और कोई भी नहीं आना जाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। चाहे तो उसमें झाड़ू भी आप लगाओ, पोछा भी आप लगाओ, सफाई भी आप करो, खुद ही रहो, दूसरे किसी को ना छोड़ो, बहुत जरूरी बात। क्योंकि जहां आप बैठते हो, दुनिया भर की बातें करते हो, वहां की दीवारों में, छत में वो संस्कार रहता है, ये पहले नियम ऐसा था और आज भी है, यही हमारी मुश्किल है। हम हिंदुस्तानी लोगों ने अपनी बेतुक व्यवहार से, जैसे कि जूता है उसको नीचे उतारने का नियम है, कहां पर, बिल्कुल नीचे बाहर। वो कल रात एक सत्संग हो रहा था पांच माला में, देखा तो अंधेरा है, लाइट है, मगर ढेरों पड़ा था जूता, इतना ढेर पड़ा हुआ है, क्यों भाई इतने सारे लोग क्यों जूता ले आते, जो लोग रहते हैं हम लोग तो रह के आएंगे, समझने वाली बात है, किंतु इतने सारे लोग आए, तो मैंने भगवान है ड्राइवर वो पूछा, इन लोगों को क्यों, समझी बड़े लोग हैं इनको क्या बोलना, अरे बड़े लोग तो खुद पहले करना चाहिए, कल शाम को बोला है कि भाई जो बड़े लोग हैं वो तो व्यवहार दूसरों को सिखाए, वो गलत करेंगे तो उनको देखकर दूसरे भी करेंगे। जापान में आज भी जाओ, अपना घर का जूता पहन करके आप गए, वो कोई भी आपको उस जूते के साथ में अपने घर में नहीं घुसने देगा, ना बाहर निकालो। आज भी जापान में किसी के भी घर में जाओ जूता बाहर निकालो, निकाल करके वहां 20 जोड़ी चप्पल रखें, इसमें से जो आपको फिट आएगा पहन लो। ताइवान का भी यही ढंग, घर में गए तो, जापान के तो अधिकांश होटलों में भी यही रहा, अपना जूता बाहर, आपका जूता हमारे अंदर नहीं आएगा। फिर जो चप्पल रखे है वो चप्पल आप घर में घूम सकते हो, रसोई में नहीं, शौचालय में नहीं, शौचालय के चप्पल अलग रखी हुई उसको पहन के जाना है, रसोई में तो आपका प्रवेश ही निषेध है, गए तो जो जूता दिया है आपको उसको बाहर रखो, बिना चप्पल क्या हो। और हमारा माहौल क्या हो गया है, हम जिस जूते में अपना नौकरी में जाते हैं, वर्ली जाते हैं, साकिना का जाते हैं, नवी मुंबई जाते हैं, उसी जूते को पहन के घर में आ गए। घर में आके रसोई में आ गए, न हाथ धोया, न मुंह धोया, न पांव धोया। रसोई में बीबी खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है, दीदी खाना बना रही है, तो बर्तन खोल करके एक आलू खा लिया, एक भिंडी खा लिया। ये सच्ची असुचि है वो आवश्यक है, शुद्ध अशुद्ध आवश्यक है। देखिए कभी कभी बुरा लगता है कि ये वैष्णव आचार्य हैं वो क्यों ऐसा करते हैं। वो कहते हैं कि भाई वैष्णव नहीं आप अंदर नहीं आएंगे, अंदर नहीं आएंगे आप, वैष्णव का चौका अलग रहेगा। क्यों? वो क्या बोलते हैं, ये अपरस राखे छे। अपरस राखे छे मैंने क्या, वो अपना पानी अपना भरती है, पांव में बोरियां बांध करके कुएं से पानी लाती है हमारी दादी। वो अपना पानी अपना भरती है, अपना कपड़ा अपना धोती है, और कपड़ा भी अलग रखती है, उसको कोई छुएगा नहीं, उसका कमरा अलग है, उसके ठाकुर जी। उसको अपरस क्या है, अस्पर्श। अपरस क्या होता है, अस्पर्श। क्यों? वो परमात्मा के साथ में हमारा जो व्यवहार है उसमें दूसरा व्यवधान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? देखिए जैसे कि एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन थिएटर भी है, तो ऑपरेशन थिएटर में कौन जाएगा, वो डॉक्टर ही तो जाएगा, और जनता थोड़ी अंदर जाएगी ना। डॉक्टर भी अपने जूते बाहर निकालता है और यहां तक हाथ धो लेता है, यहां तक पूरा ऐसा करके ऐसा करता है, यूं करके ऐसा करता है, फिर गीले गीले हाथ में ही कोट है उसको दूसरा कोई पहनाता है, फिर जाकर के अंदर जो कपड़े वो गर्म पानी में उबालने के बाद में भाप से सुखाए गए उनसे वो अपना हाथ धोता है। ऑपरेशन थिएटर में जो खून निकलता है, सफाई करनी है, उसके लिए इतने बड़े बड़े ग्लास पीस रहते हैं, वो गिन के रखे जाते हैं, 100, 120, 6 घंटा ऑपरेशन चलने वाला तो 500 रख देते हैं, वो भी गर्म पानी में उबाल करके भाप से सुखाए हुए, स्टरिलाइज कहते हैं उसको। वो अंदर जाने वाली हर चीज को स्टरिलाइज होना है, बिना स्टरिलाइजेशन के आपको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? वो ऑपरेशन थिएटर क्या, तो फिर हमारे अध्यात्म में हम क्यों अशुचि करें? कृष्ण ने जब कहा कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, तो आप अपने आप को स्टरिलाइज करो, और जो स्थान स्टरिलाइज है वहीं बैठो। ऑपरेशन थिएटर का जो शुद्धिकरण है उतना डॉक्टर के जो देखने वाला जो चैम्बर है तो उस चैम्बर में उतना नहीं है। वो डॉक्टर जिस चैम्बर में बैठ के देखते हैं वहां ऑपरेशन नहीं करते ना। तो आप लोगों को जहां मिलते हो मिलो, ध्यान करने के लिए तो आपको वही आपके चैम्बर में जाना पड़ेगा जहां दूसरे लोगों का प्रवेश नहीं हो। सुचौ देशे प्रतिष्ठापक को बहुत जरूरी है, क्योंकि तो फंडामेंटल नीड है, परम आवश्यक है कि हम अपने आप का शुद्धिकरण रखें। करने से लोगों को चिकचिक हो जाएगी, क्या है क्या है क्या है, किंतु क्या कहते हैं, घर में कोई एक छोटा स्थान ऐसा जो टोटल प्राइवेट हो, जिसमें आपको छोड़ करके। महाराज जी बंबई में रहने वाले को ऐसा नहीं होता है, बंबई में तो एक छोटा किचन होता है और एक छोटा कमरा होता है, और जवान लोग रहते हैं, छड़े लोग रहते हैं, तो वो लोग तो लोबी में, ये पन्नालाल टेरेस में मैंने रहा हूं काफी साल के पहले, ऐसा 50 साल के पहले हम आते रहे तो रहते थे वहां पर, हमारे मामा रहते थे विनू मांकड़ जी, तो वहां रहते थे हमने वहां पर, तो छोटे छोटे जो बच्चे रहेंगे, जवान लोग रहेंगे, रात में 10 बजे 11 बजे पहले सो नहीं सकते, सवेरे 4-5 बजे उठना ही पड़ेगा, वो माल वो पानी भरने वाला आ जाएगा, ये लगभग तो परवाह नहीं, किंतु जो शादीशुदा है बुजुर्ग लोग हैं वही कमरे में सोएंगे। वो बंबई में क्या करें, अरे बंबई में बहुत है, बहुलनाथ मंदिर है ना, ये प्रेमपुरी आश्रम है ना, ये हरे कृष्ण मंदिर है ना, ये द्वारकाधीश मंदिर है ना, वो आपके गोवालिया टैंक के पास में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, और उसके अंदर में एक गली में जाएं तो एक साईं बाबा का मंदिर है ना, इतने सारे मंदिर, इतने सारे तीर्थ, इतने सारे आश्रम, आपको कहां है? वो तो बंबई में तो बड़ा सद्भाग्य है, आपके मन में चाहिए, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आपके मन में विचार चाहिए मुझे ये करना है, कुछ भी हो जाए एक समय निश्चित करो जो उसमें आपकी सुविधा हो, सवेरे दोपहर को शाम को रात को, किंतु उस समय में ठीक वहां जाके बैठना। घर में जगह नहीं है कोई चिंता नहीं, समुद्र किनारे चले जाओ, इतना बड़ा है कोई रोकता नहीं, वहां 24 घंटों में कभी भी जाकर के बैठो। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग नंगतो पिवा यस्मरित पुंडरीकाक्षम सभा या अभ्यंतर सुचि, अपना एक सुचि मंत्र, शुद्ध मंत्र बैठ करके थोड़ा भगवान का नाम कर लो, वो स्थान शुद्ध हो जाएगा। करो, करने के लिए मुश्किल नहीं है, अपने पूजा घर को प्राइवेट में रखो। शुचौ देह से प्रतिष्ठाप्य, आपका जो स्थान है वो शुद्ध होना चाहिए। स्थिरम आसनम आत्मना, स्थिर बैठना, किंतु स्थिर बैठने के पहले वो आगे वाली बात समझना चाहिए। नाते नीचम नाते ऊंचम, ओ आसन बहुत ऊंचा नहीं चाहिए, आसन नीचे भी नहीं चाहिए। मान लीजिए कि आप यहां से ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, ऋषिकेश में थोड़ा चलकर गए लक्ष्मण झूला की ओर, एक बहुत सुंदर पहाड़ देखा, चोटी में ऐसे आकर बैठ गए फोटो खिंचाने के लिए, फोटो भी खिंचा लिया, मैं ध्यान में बैठता हूं। अब आप मुंबई से गए, एयरपोर्ट गए थे, यहां से दिल्ली गए, वहां से कार में गए, एग्जॉस्ट तो ही गए, एग्जॉस्ट होने के बाद में वहां ठंडी हवा चल रही है और गंगा जी का दृश्य सुंदर है, एक दो मिनट में नींद आ जाएगी, और झपकी आई तो सीधे आपका गंगा जी में विसर्जन हो जाएगा, जल समाधि जीते जीते हो जाएगी। ऐसा मत करो, यहां से गिर जाओ, बहुत ऊंचा स्थान मत करो, संतुलित हो, समत्वम बहुत जरूरी बात है, संतुलित हो, जिसमें बैठे तो पूरा ध्यान है। दो कंकर अभी मैं आ रहा था, एक कंकर पांव में लगा तो पकड़ा, पकड़ करके, और किसके जूतों में आ सकता है, पांव में भी आ सकता है, तो उठा करके बाहर रख के आए, एक छोटा कंकर, बहुत जरूरी बात है। आप बैठने के लिए कोशिश करो और एक कपड़ा सादा बिछा दिए और बैठ गए, वो कंकर जब तक चुपता रहेगा, न जप में ध्यान रहेगा, न ध्यान में रहे ध्यान रहेगा, न तो चांदनी में ध्यान रहेगा, न फूलों में ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा ये कंकर कहां चुप रहा है उसको निकालो, बड़ा मुश्किल बात है। इसलिए क्या कहा कि एक संतुलित स्थान हो, समतल स्थान हो, ऊंचा नहीं हो, नीचा भी नहीं हो बहुत, जमीन में बैठ गए, जो जमीन पर कोई हमेशा आकर बैठता नहीं है, ऐसे एकांत में आकर बैठ गए तो ध्यान नहीं रहेगा, सूखे पत्तों के ऊपर में एक आसन बिछा के बैठ लो, थोड़ी देर में मुश्किल हो जाएगा। क्या तो चींटियां बहुत होती है, कीड़े भी बहुत होते हैं, वो सब काटेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, जब सूखे पत्तों के बीच बैठोगे थोड़ा दाएं बाएं किया तो कड़कड़ कड़कड़ आवाज भी आती है ना, जहां पानी की आवाज बहुत बहने की आती है वहां पर भी नहीं बैठना, टप टप टप। हमारा घड़ी है, घड़ी है, उसको यहां रख लिए, ध्यान करो तो उसकी आवाज सुनता ही रहता है। तो ये बाला आया था ना, बाला मेरे को बोले स्वामी जी आपके सत्संग में तो इसको रख लो, किंतु ध्यान की कक्षा खंडित करो, मैं दूसरा घड़ी दूंगा। मेरे को दूसरा घड़ी दिया है, वो भी मैं ला के रखा हूं, तो सत्संग में तो यही रखता हूं, दूसरा वाला क्यों आवाज करती है, एक छोटा आवाज पूरा शांति हो जाए, वहां एक एयर कंडीशन थोड़ा टपक रहा है, जो टपकता है ना टप टप, तो सिर में कोई हथौड़ी मार रहा है ऐसा लगेगा। जब बिल्कुल शांत हो जाओगे, एक सुई गिरती है वो एटम बम के मापिक लगेगी। तो क्या कहा, नाति नीचम नाति ऊंचम, आपका आसन जो है वो जमीन से बहुत ऊपर ना हो, एकदम जमीन से थोड़ा जमीन से अलग करके हो। क्यों कहा है, चैला जिन कुशोत्तरम, ये क्या मतलब क्या है, चैला जिन क्या होता है, ये कृष्ण मृग क्यों चाहिए, कुश क्यों चाहिए। अभी अमेरिका में जाकर पूछो कि भाई मुझको कुश चाहिए, तो बोलेंगे व्हाट्स दैट, बोलेंगे भाई घास का होता है, तो कुश तो साधारण घास नहीं है, वो कुशल आदमी ही उसको पता कर सकता है कि ये कुश है, इसलिए कुशल से ही कुश हुआ, कुश से कुशल हुआ है, तो ये कुशल है वो अमेरिका में नहीं चलेगी। अब बंबई में पूछ लो तो माधव बाग में शायद मिल सकता है कुश का आसन, वो भी क्या है 150-200-300 रुपए का मिलेगा। क्या भाई, ध्यान करने के लिए ये सब नखरा करने की क्या आवश्यकता है, समझो उसको कुश के आसन का हेतु क्या है। जमीन में पहले कुश का आसन बिछाना, उसके ऊपर मृग छाला बिछाना, उसके ऊपर एक सादा कपड़ा कॉटन का बिछाना, तब ध्यान करना। क्यों, देखिए आप जो ध्यान करते हो तो क्या होता है, ये पालथी मार के, जैसे कि गिरीश भाई बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं यहां पर नीचे, पालथी मार के बैठते हो, सीधा बैठते हो, तो ये जो जमीन जो है, ये जमीन में एक शक्ति है, क्या शक्ति है, वो बिजली को खींचने की। जैसे कि आप वीटी स्टेशन के ऊपर एक लंबा वायर है, उस पर एक त्रिशूल के मापक लगाए, वो क्या होता है, बिजली गिरने पर वो खींच लेगा, उसके साथ में एक कॉपर वायर है, वो पूरा जमीन में गाड़ देते हैं, तो बिजली गिरे तो सीधा वो जमीन उसको खींच लेती है। सतो निरंतर यह दीर्घकाल पर्यंत दृढ़ भूमि ही सत्कार सभी। तो जब नियम से आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करते रहेंगे, एक स्थान में एक समय में ध्यान का अभ्यास करते रहेंगे, क्या होगा? ये होगा कि आपके भीतर में एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, एक चेतना उत्पन्न होगी, एक विद्युत उत्पन्न होगा। और जो विद्युत है वो जमीन उसको खींच लेती है, ये जमीन का गुण है। तो आप जिस जमीन पर बैठे हैं उस जमीन और आपके बीच में एक ऐसा आवरण चाहिए जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत का भारवाहक ना हो। इसलिए पहले जो पुराने लोग हैं वो क्या करते थे, पूजा में रेशमी वस्त्र पहन करके बैठते थे, और नहीं तो ऊन की कामड़ी, ऊन की धाबड़ी, ऊन का वस्त्र है वो पहन करके बैठते थे। जो ऊन है, शुद्ध ऊन और शुद्ध रेशम है, वो तो नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से विद्युत प्रसार नहीं होती है। और पहले घर में जो रसोई बनाते थे वो भी रेशमी वस्त्र पहन करके रसोई बनाते थे, पूजा करते थे रेशमी वस्त्र करते थे, वो धाबड़ी कामड़ी पहन करके रसोई बनाते थे। रसोई घर में जो रसोई बनाता है उसको कोई भी जाकर के छूने का अधिकार नहीं था। जब ठाकुर जी का भोग लगे तब उसको छू, तब तक मत छू। ये सारे नियम जो है वैज्ञानिक थे, उत्तुक नहीं थी, वो वैज्ञानिक था। कृष्ण परमात्मा स्पष्ट कर क्या कहा आपको, छठे अध्याय में ये हृदय है, ये सात श्लोक साधना पथ के। एक एक बात को वैज्ञानिक ढंग से समझना चाहिए। सुचौदय से प्रतिष्ठा पे क्या कहा कि जो कुश है वो उसमें से बिजली पसार नहीं होती है, और कृष्ण मृग जो हिरण है, और शेर का चमड़ा बोलना चाहिए नहीं, व्याघ्र चर्म बोलना नहीं। क्यों? व्याघ्र चर्म है बड़ी उच्च कोटि के महात्मा के लिए ठीक है, कि व्याघ्र जो है वो तो हिंसक प्राणी है, हिंसक प्राणी है, तो उसके चमड़े के ऊपर बैठे तो आपकी जो सुचिता। हिरण तो है निर्दोष प्राणी है, हिरण निर्दोष प्राणी है, इसलिए हिरण के ऊपर। कृष्ण मृग का, कृष्ण मृग तो बिना हिमालय के मिल ही नहीं सकता है, इसलिए हिमालय में रहने वाला जो हिरण है, जो शुद्ध चैतन्य में है, जो संतों के आश्रम में रहता है, जहां ओमकार की ध्वनि सदा होती है, उसके चमड़े को लेकर रखना ताकि आपके ऊपर। फिर ये भी कहा कि भाई ये चमड़ा तो फिर गर्म होगा, घास भी गर्म होगा। अगर घंटों तक रोज मान लीजिए डेढ़ दो घंटा बैठेगा अभ्यास किया तो आपको पाइल्स हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा। इसलिए उस चमड़े के ऊपर आपको चाहिए आप एक कॉटन का सूती टॉवल को डाल लो। ये जो सूती टॉवल है, जो कॉटन टॉवल है, इसको फिर मुंह पूछना, हाथ पूछना, लेटने के लिए नहीं, वो केवल उसी के लिए ही उसका उपयोग होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात, तीन बात आपके सामने स्पष्ट हो गई। सुचौदय से प्रतिष्ठाप्य माने आपका जो ध्यान करने का स्थान है वो एक शुद्ध स्थान हो। शुद्ध स्थान मैंने क्या कहा कि जहां पर जगत चर्चा ना होती हो, विषय का, भोग का, विलास का स्थान वो ना हो। बिस्तर में बैठकर तो कभी नहीं, टीवी रूम में बैठ के कभी नहीं, टीवी के सामने बैठ कर भी नहीं, और खाने के कपड़े पहन करके नहीं, खाने के कमरे में भी नहीं, जहां लोगों को मिलते हो, गप लड़ाते हो, ताश खेलते हो, वहां भी नहीं। ऐसे स्थान में जहां पर केवल आपके ध्यान और पूजा के अतिरिक्त और कोई प्रवृत्ति ना होती हो, जहां लोग बाग आकर के चक्कर ना काटते हो, तो वो स्थान उचित है। वो स्थान है जहां आप आसन लगाएंगे, बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा नहीं होना चाहिए। और क्या कहा उनको कि वहां कुश बिछाओ और मृगशाला बिछाओ, ऊपर एक कोटन डाल लो। अभी महाराज कुश नहीं मिले, महाराज मृगशाला नहीं मिले, तो क्या करें? बोलते हैं सर्वसिद्धि कंबले, जो ऊन का, शुद्ध ऊन का जो कंबल होता है केवल उसी को बिछा। नीचे एक प्लास्टिक बिछा लो, उसके ऊपर में एक कंबल बिछा लो, कंबल के ऊपर में एक कॉटन का टुवाल, अच्छा साफ सुथरा, जिनका कॉटन को, टुवाल को और कंबल को फिर आपने ओढ़ने बिछाने के लिए नहीं रखना है, वो केवल रोल करके वहीं रखो, फिर बैठने के लिए उसको केवल यही काम करना है। अभी देखो, अभी मैं तो चप्पल पहनता हूं, अभी तो काफी साल हो गया, कोई 10-12 साल हो गया, पहले मैं भी खड़ा हूं पहनता था। अभी खड़ा हूं पहन करके देश विदेश में घूमते रहो, भागने दौड़ने की आदत एक बार टूट जाए तो फिर दो जोड़ी खड़ा हूं साथ में लेके जाना पड़ता है, बड़ा गड़बड़ पे छोड़ दिया हमने। नहीं तो खड़ा हूं पहनना है, वो साधु लोग क्यों खड़ा हूं पहनते हैं? थोड़ा सोचो, थोड़ा पुराने ढंग में जाओ। अभी हम टेबल कुर्सी में बैठते हैं, खाना छोड़ दो। पहले कहां भोजन होता था? जमीन पर बैठते थे, जमीन में लकड़ी के पट्टे के ऊपर बैठते थे, और भोजन जो है लकड़ी की चौकी के ऊपर रखा जाता था। और खाना खाने के समय जो लोग यहां हाथ रखते हैं, ऐसे खाना खाते हैं, तो उसको बोलते ओठिंगण। वो हाथ को रखने के लिए भी इतना एक बना हुआ था डम्बल्स के, डमरू के मापिक, और घुटना जमीन से ना सटे उसके नीचे भी ढीचणियों इतना घुटने के नीचे रखते थे। एक हाथ को रखने के लिए रखते थे, खुद लकड़ी के पट्टे में बैठते थे, और खुद वो भोजन जो है बाजोट पर, चौकी पर रखते थे और पहनते थे खड़ाऊं। ये तमाम जो खड़ाऊं है, ये चौकी है, पट्टा है, लकड़ी का होता था। क्यों? क्योंकि आप जब भोजन भी करते हो तो उस समय भी आपके भीतर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है, जो आपके भोजन को पचाने के लिए सहाय करती है। किंतु अगर आप सीधे जमीन पर बैठते हैं तो फिर क्या होगा? फिर वो जो आपकी पाचन क्रिया है मंद हो जाती है। ये बहुत जरूरी बात, ये बहुत समझने की बात है। क्यों ये सब करते थे? उनके पीछे एक विज्ञान था, एक समझ थी, एक सरलता थी, एक बड़ी स्पष्टता थी विज्ञान के माफिक। अभी इतनी बात कहे तो क्या कहा कि स्थिरम आसनम आत्मना। अपने दैनिक क्रम में एक तय करो, शुरू में केवल 5 मिनट, बस 5 ही मिनट बैठना। वो मैं 1 घंटा बैठूंगा, नहीं बैठ पाओगे, पांव लंबे करोगे, पांव छोटे करोगे, पांव सिकुड़ लोगे, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कुछ कर लोगे, इसलिए 5 मिनट किंतु सीधा बैठना। वो आगे आ रहा है, समम काय शिव ग्रीवम, ये 13वां मंत्र में है, किंतु यहां स्थिर आसन मात्र है कि आपका आसन स्थिर हो, आप स्थिर बैठे। आप लोग दूध में से दही बनाते हो, दूध को थोड़ा गर्म करके करने के बाद में थोड़ा उसको मामूली ठंडा करना पड़ता है, कुनकुना नव सेकूं, उसके अंदर में 1 चम्मच दही डाल के हिला करके उसको रखने से उसमें से दही बनता है। कहां रखते हो? वो कभी रेडियो के ऊपर रखो, कभी टीवी के ऊपर रखो, थोड़ी देर के लिए रसोई में रखो, थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में रख लो, थोड़ी देर डाइनिंग टेबल में रख लो, थोड़ी देर आपके बेडरूम में रख लो, तो क्या होता है? नहीं होता है भाई, एक स्थान पर स्थिर रखना चाहिए। अगर दूध को जमाने के लिए एक स्थान में स्थिर नहीं रखा तो दूध भी नहीं जमता है। ध्यान करने के लिए नियम से एक स्थान पर स्थिर बैठना चाहिए। 5 मिनट से अभ्यास करो, धीरे धीरे करके 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 6 महीने में 20 मिनट कर लो। मैं आपको 21 मिनट की सलाह नहीं करूंगा और 19 की भी नहीं करूंगा, ना। स्वामी जी दिन में 2 बार कर लें, अभी 1 ही बार करो, एक कोशिश करो, 1 साल का निर्णय कर लो। ये 12-13 दिन के बाद में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हो जाएगी, हिंदुओं का नूतन वर्ष है, मराठी में भी गुड़ी पड़वा मनता था ना, सिंधी लोग भी बोलते हैं चेटी चांद है, शुद्ध दिन है, वसंत नवरात्रि का प्रारंभ होता है। कोशिश करो, 1-5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, कुछ भी नहीं है, जूता भी नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, टेलीफोन नहीं, वो 5 मिनट में मैं भी नहीं, खत्म, मेरे को छोड़ के, एवरीडे, प्रतिदिन, सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, रेगुलरली, विदाउट फेल, विद इंटरेस्ट, रुचिपूर्वक प्रतिदिन, वैज्ञानिक ढंग से। क्या करना? कुछ नहीं। क्या बोलना? कुछ नहीं। क्या देखना? कुछ नहीं। क्या सुनना? कुछ नहीं। खाली बैठना, कुछ बोलना नहीं, ना सोचना नहीं, ना सुनना नहीं, ना कुछ मत करो, खाली स्थिर बैठो 5 मिनट। 6 महीने के बाद में 6 मिनट करना, 7 महीने के बाद में 7 मिनट करना, ऐसे करते करते 1.5 साल में 20 मिनट कर लेना, फिर 20 ही मिनट बैठो। अब देखो चमत्कार हो जाएगा, क्या हो जाएगा कल बात करेंगे, आज का समय पूरा हो गया है। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद, आपके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम, नमो नारायण।